वृंदावन की, और वृंदावन से और लीला स्थलियों की हम लोगों ने परिक्रमा की। इसमें हमारे पंडा जी अभी बैठे हैं, श्री नीलमणि पंडा जी। इन्होंने हमारी यहाँ पर बहुत सहायता की। आज से ही नहीं, श्री भक्ति विनोद ठाकुर जब ब्रज में आए तो वृंदावन में इन लोगों के पिताजी कौन थे हमारे, उन्होंने उनकी बहुत सहायता की यहाँ पर। और उसके बाद में उनके श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, तत्पश्चात श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती, और उनके जितने शिष्य प्रशिष्य हैं सब लोगों का, ये लोग तीर्थ गुरु हैं, मार्ग प्रदर्शन करते हैं। तो इस वर्ष भी इन्होंने अच्छी तरह से परिक्रमा हमारी संभाली। विशेष करके अस्वस्थ होने पर उन्होंने अपने पुत्र को भेज दिया, इन्होंने हम लोगों का मार्गदर्शन किया। इसलिए मैं आप सब लोगों की ओर से, मैं सब लोगों का प्रतिनिधि हो करके, क्योंकि आप लोगों ने परिक्रमा की है, प्रतिनिधि हो करके इनका यथावत सम्मान मैं कर रहा हूँ। गौर प्रेमानंद। तब मैं एक बात ये करना चाहता हूँ, निवेदन। अब तक तो हमारे पंडे लोग थे, भविष्यत में पंडे लोग यदि धोती पहनना नहीं सीखेंगे, गले में माला नहीं लेंगे, तो शायद संबंध यहीं पर समाप्त हो जाएगा। इसलिए अनुरोध करता हूँ कि ये पंडित जी भी अपने बेटों को कुछ धोती बांधना सिखलाएंगे, गले में तुलसी माला देना सिखलाएंगे, और नहीं तो फिर कैसे संबंध रहेगा, ये भक्ति विनोद ठाकुर साथ संबंध समाप्त हो जाएगा। इसलिए इनके बेटे लोग हैं, इनसे भी मैं निवेदन करता हूँ, आधुनिक पद पर इतने मत उठ जाएं ये अपने बाप संपत्ति दादा की संस्कृति को ही भूल जाए। इनके बाबा को मैं जानता था, इनके पिताजी चाचा जी बहुत नामी आदमी थे, कविताएं रचना करते, म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन भी रहे, और बड़े योग्य व्यक्ति थे। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने, प्रभुपाद ने ऐसे समझ सोच करके किया, किंतु क्रमशः ये लोग संस्कृति से अब हट रहे हैं। मैं निवेदन करता जी हटिए मत, कुछ भी कीजिए किंतु इस संस्कृति में रहो, हम लोगों से संबंध रहो तो तुम्हारा परमार्थी कल्याण होगा, नहीं तो भगवत भजन कुछ नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। अभी हमारे पंडा जी भी भजन करते हैं, माला लेकर के करते हैं। इनका लड़कों से भी कहता हूँ कि ये लोग भी भजन करना कुछ कुछ सीखें, अपना जीवन को ठीक बनाए। यही कह करके मैं अपने पूजनीय पंडा जी को, धोती पंडा नहीं तो क्या दें, माधव महाराज ठीक। हमारी बात का दुख मत मानना भैया, अपना कल्याण चाहो। और देखो तिलक ऐसे मत लगाओ, ऐसे लगाओ, सीखो कुछ कुछ सीखो, अपना जीवन निर्वाह के लिए और भी करो, किंतु ये भी प्रधान रहना चाहिए। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे वंचाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दे कृतेन्दीवरं जड्डं जागुदरोचि संविदधतं पट्टम्बरस्य वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्यायें दामो श्रीमद् भागवत में नेमि महाराज के प्रश्न के उत्तर में कवि ऋषि कह रहे हैं जे वै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये अंजा पुंसाम अभिदुषांग विद्धि भगवतान हितान ज्ञानास्थाय नरो राजन न प्रमादेत कर हिचित धामन निमिल्यवा नेत्रेश खल न खलेन न पते दिया। साधारण जन साधारण को भोले भाले व्यक्तियों को भगवान अपनी प्राप्ति के लिए जो अपने मुख से जो उपाय बतलाया है उसी को भागवत धर्म वैष्णव धर्म और भक्ति धर्म कहते हैं। भगवान ने स्वयं बतलाया है उस भागवत धर्म का अवलंबन लेकर के मनुष्य विघ्नों से पीड़ित नहीं होगा। आंखों को बंद करके जिस प्रकार से सपाट सड़क के ऊपर में एक आदमी दौड़ता है दौड़ने पर भी न उसे गिरने का न फिसलने का डर है। भागवत धर्म ऐसा है, इसका पथ ऐसा सहज सुंदर है कोई आंख बंद करके और जोर से दौड़ रहा है उस समय ये ठीक नहीं रहता जे पैर कहां पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कुछ गैलप दे करके भी वो दौड़ता है किंतु वो गिरता नहीं है फिसलता नहीं है। यहां नेत्रे निमिल्य आंख को बंद करके दौड़ रहा है अर्थात नेत्र तो है वो बंद करके दौड़ रहा है। जहां पर पैर पड़ना चाहिए वहां पर नहीं पैर पड़ करके कुछ आगे पड़ जाता है। ऐसा यहां पर धावन के द्वारा ऐसा अर्थ प्रतीत होता है। अब उदाहरण के उदाहरण तो बोला अब उसको ले रहे हैं। यदि कोई भागवत धर्म का आश्रय ले जो भगवान ने अपने मुख से बतलाया है एकादश स्कंद में भक्ति धर्म क्या है कैसे भगवान को पाया जा सकता है इसलिए उस भागवत धर्म का भक्ति धर्म का भागवत में लिखे हुए धर्म का यदि कोई आश्रय ले और उस धर्म के समस्त अंगों को जानता हुआ भी, समस्त अंगों को जानता है, अनजान की भांति किसी आनुषंगिक अंग का उल्लंघन करता है, सब अंगों का पालन नहीं करता, कुछ छोड़ भी देता है, परंतु मूल धर्म का अनुष्ठान करता है, भागवत धर्म का अनुष्ठान करता है, कुछ कुछ छोड़ भी देता है, तो वो दोष का भागी नहीं होता, न वह फल से वंचित होता है। यही व्याख्या उचित है। यहां निमिलन शब्द का अर्थ आंख बंद कर रहा है, अर्थात श्रुति और स्मृति में नहीं जानता, ऐसा अर्थ नहीं होना चाहिए। यह श्रुति और स्मृति के विषय में है, क्योंकि उसे मुख्य अर्थ में बाधा आएगी, इसको और पीछे बतलाएंगे। इन दोनों पदों से यहां 32 प्रकार के सेवा अपराधों के अभाव को भी अंगीकार किया। देखो, हरि नाम कर रहे हैं, भगवान की हरि कथा सुन रहे हैं, प्रेममयी चित्त द्रवित नहीं होता, आंखों से अश्रुधारा यदि नहीं निकलती, समझो जो हमारा अपराध है, जरूर इस जन्म का अपराध या पूर्व जन्म का अपराध है, इसलिए हृदय कठोर बना है, नहीं तो भगवान का नाम इतना मधुर है कि जरूर ही चित्त द्रवित होगा। किंतु हो ना रहे, यहां तात्पर्य क्या, जरूर हमें कोई अपराध है, इस जन्म का है चाहे उस जन्म का, तो फिर क्या करना चाहिए, उसके लिए अनुताप करो, निरंतर हरि नाम करो, और जहां से अपराध हुआ है उनसे कहो हमारा अपराध क्षमा कर दीजिए। नवदीप धाम में अपराध भंजन पाठ कुलिया ग्राम, वहां पर अपराध के लिए वहां पर जाओ, नहीं तो मन से जाओ, उनसे प्रार्थना करो। हमारे ज्ञात अज्ञात जितने अपराध हैं, हे वैष्णव लोग, हे धाम, हे कृष्ण नाम, क्षमा कीजिए। आप कहते हैं सवारी पर चढ़कर या जूता पहनकर मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना ये मना है, सेवा अपराध में भी बतलाया गया है पशु तुल्य मनुष्य हरि के प्रति अपराध करता है इत्यादि, और नामापराध बहुत पहले भी किया गया हो अथवा नया हो। देखो इतना मना कर रहे हैं रोज रोज 10-10 बार, और तब वो वैष्णव अपराध कर देते हैं, किसी को कोई मार दिया, भी चोट लग गई, अस्पताल गए, गया तो इतना बतलाते हैं, तो भी ये सब अपराध हैं, इतना सुनने के बाद में क्यों होता है, क्यों नहीं कंट्रोल करते हैं अपने चित्त को, क्यों परचर्चा कर रहे हो, वैष्णव की निंदा क्यों करते हो, इतना मना करने पर भी। इसलिए भाई सावधान हो। इसलिए विघ्नों या लक्षणों से यह अनुमान हो जाए कि यदि कि अपराध का फल है जो हमारा चित्त द्रवित नहीं हो रहा है, तब निरंतर नाम ग्रहण करो, हृदय में पश्चाताप हो, हाय 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 हमारा ये जीवन व्यर्थ गया, तो धीरे धीरे भक्ति में निष्ठा पैदा हो जाएगी और फिर हृदय द्रवित होने लग जाएगा, अपराध नष्ट हो जाएंगे। यदि अपराध जानबूझ करके किए गए हों तो भाई और भी अनुताप करना होगा, हरिनाम करना होगा, और फिर भविष्य रूप में हम नहीं करेंगे। ट्राई टू हियर वेरी केयरफुली।
Devi Maharaj's questions in the 11th canto to the Nava Yogendras. The question was asked, what is Dharma? Therefore, one of the Nava Yogendras replied, what Bhagavan himself has explained in the Shastra, that is called Bhagavad Dharma. This path is so, therefore on this path of bhakti, one should run even with his eyes closed, and one should have no fear of slipping or falling. One should not consider, where should I put my feet, where is my next step? Therefore one should with eyes closed run on this path of Bhagavad Dharma. Therefore, even though we have eyes, but not using them, one should run. Meaning is, one who has taken exclusive shelter of Bhagavad Bhakti and knows all the angas of Bhakti, still, he may knowingly or unknowingly fail to follow all the limbs of Bhakti. But still, for him there is neither no bad destination, nor will he be cheated of the fruits of Bhagavad Bhakti at all. Here, the Shruti and Smriti have been described to be like eyes. Therefore, eyes closed here does not mean ignoring the tenets of the scriptures. But here means that a full performance of all the limbs of bhakti here will not be considered as a seva aparad. That is the meaning of eyes closed and run. Therefore, what is our situation? We are chanting Harinam and hearing Harigata, but still, tears are not falling from our eyes and our heart is not melting. What is the reason? Even though Krishna's name is so sweet and attractive, still, we are not feeling the effect of that. This is because in this birth or in previous birth, we have committed offense. Therefore, what should we do in our situation? We should weep and beg forgiveness at the feet of Hari, Guru and Vaishnavas for the offences we have committed in knowledge or without knowledge. Therefore we should go to Navadvip, which is Aparad Manjan Pit. Part. There, if you cannot go by body, you can go by mind. That is the place where all Aparad is forgiven. And there you should weep. Hey Sridham, Navadvip. Hey Vaishnavas. Hey Gurudev. What offense I have done knowingly or unknowingly, please forgive them. Forgive me. There should be anuttap, self
repentation.
Therefore, even though we are hearing 10 times a day, we should not commit Vaishnava Parada. Still, we are suffering the results of offenses we are doing now or previous ones. Even today, yesterday someone was beaten, and that person today is going to the hospital. Therefore, why we are failing to control our minds? Why we are still gossiping, blaspheming Vaishnavas? Therefore, weeping, we should think, my life is useless, and therefore we should take Harinam with repentance. At the stage of Nishta, the effects of these aparads will be diminished. But still, if one commits Vaishnava Parada knowingly, one should weep even more.
और एक बात कहते हैं, यदि कोई सोचे कि शास्त्रों में जैसा लिखा गया है वे लक्षण उस साधु में है कि नहीं, हरिनाम करता है, कृष्ण को छोड़ करके और किसी की पूजा या सेवा नहीं करता, और कृष्ण के अतिरिक्त और किसी की सेवा भी नहीं चाहता, उनकी प्रसन्नता ही केवल चाहता है। अनन्यता है, किंतु यदि वो क्रोधी है, दुराचारी है, तो ऐसे वैष्णव की निंदा करने से हानि क्या है? सच बात हम यदि कह दिया तो हर्ज क्या हुआ? सचमुच में तो क्रोधी है, हमने कह दिया जी क्रोधी है, तो क्या हर्ज है? बहुत हर्ज है, मत करो ऐसा। क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा, दुराचारी होने पर भी अनन्यता, जो साधु का मूल लक्षण है अनन्यता, उसके द्वारा जल्दी से जल्दी वो दुराचारी व्यक्ति परम धार्मिक हो जाएगा। इसलिए खबरदार, उसकी निंदा मत करो, उसके चरणों में अपराध मत करो। सब प्रकार के आचारहीन, शॉर्ट बुद्धि, संस्कारहीन, नीच जाति, जगत को वंचित वंचना करने वाले जिन व्यक्तियों को शास्त्र में दुराचारी कहा गया है, ऐसे दुराचारी को भी भगवान ने कहा है कि यदि वे अनन्य रूप से मेरा भजन करते हैं तो उसे साधु समझो, और यदि साधु है तो कोई बात ही नहीं। खबरदार, निंदा मत करो। कृपालु अकृत दोह, तितिक्षु सर्वदेहि नाम सत्य सारो अनवद्यात्मा समा सर्वोपकार। हे प्रिय उद्धव, साधु मेरा भक्त कृपालु होता है, समस्त प्राणियों में अद्रोह, द्रोह नहीं आचरण करता, किसी की बुराई की चिंता नहीं करता, किसी से द्रोह नहीं करता, सुख दुख मान अपमान आदि को सहन करने वाला होता है। भगवान ही सत्य है, वही उनका जीवन है, उनके मन में किसी भी पाप की वासना नहीं होती, वह समदर्शी और भला करने वाला है। ये लक्षण वाले लोग साधु हैं, बाकी लोग असाधु हैं, तो मैं असाधुओं की निंदा करूंगा तो हर्ज क्या? तो सत्य ही कह रहा है, खबरदार मत करो, मत करो, इसलिए बार बार कहते हैं। चक्रवर्ती कहते हैं ऐसा मत सोचो, ऐसा मत करो, सतांग निंदा। उनको भी यदि अनन्य रूप में भजन करने वाले हैं तो उनको साधु ही मान लो भाई। अपिचेत सो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधु रेव स मंतव्य मंतव्य, निश्चित मानो, नहीं करोगे तो पाप होगा, दोष लगेगा। साधुनां समचित्तानां सूत्रं मत्कृतात्मानं, साधु वही है जो समचित्त है। समचित्त केवल ही हो सकता है जो भगवान को, जिन्होंने अपने को अर्पण कर रखा है। जो अनन्य भाव से भगवान के भजन में लगा हुआ है उसे साधु ही मानो। विरक्त सन्यासी या रंगे कपड़े धारण करने वाला साधु व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है। केवल कपड़े रंग लिए हैं, टीका माला इत्यादि धारण किए हुए हैं, ऐसे ही व्यक्ति केवल साधु नहीं है। गृहस्थ जगत में भी वर्णाश्रम के आचारों को पालन करने वाला भी यदि व्यक्ति साधु है, अनन्य रूप से मेरी भजन करता है, भक्त है। इसलिए संत निंदा बड़ी भयंकर है। भगवान अपने प्रति किए हुए अपराधों को क्षमा कर देंगे, किंतु संतों के प्रति नहीं कर देंगे। नाम के प्रति अपराध को भी क्षमा कर सकते हैं किसी स्थिति में, किंतु वैष्णव जो उनके हृदय हैं वो क्षमा नहीं कर सकते भगवान। यदि किसी प्रबल अपराध हमने किया कोई, और साधु वो प्रसन्न नहीं हो रहे हो, वैष्णव प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तो क्या समझेंगे वो साधु नहीं है? कहे नहीं मत समझो, क्योंकि भगवान ने समस्त आचारों से हीन सठ बुद्धि संस्कार हीन नीच व्यक्ति और जगत की वंचना करने वाले दुराचारी ही नहीं बल्कि इन दोषों से कई अधिक सुदुराचारी को भी यदि वह अनन्य रूप से भजन करता उसे साधु ही मानो। दुराचारी भजन कर ही नहीं सकता और भजन करने वाला दुराचारी हो ही नहीं सकता, ऐसा मत समझो। इतिहास भरा पड़ा है, इतिहास भरा पड़ा है, उसमें बड़े बड़े वैष्णव को देखा जाता है जो सिद्ध महापुरुष हैं, वो भी कुछ समय के लिए ऐसा मालूम होता है दुराचारी हो गए, ऐसा देखा जाता है। किंतु ऐसा समझना नहीं चाहिए, कभी कभी भगवान जानबूझ करके करा देते हैं शिक्षा के लिए। यदि नमस्कार स्तुति अनुकूल सेवा करने पर भी यदि वो वैष्णव किसी प्रकार से प्रसन्न नहीं होते तो अतिशय पश्चात करते हुए नाम संकीर्तन का शरण लो तो तुम्हारा अपराध दूर हो जाएगा, जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। पीछे ऐसा भी देखा जाता है कोई कोई महाभागवत होते हैं उनके प्रति यदि कोई अपराध भी करता है महापराध हो जाने पर भी वो क्रोधित नहीं होते हैं, तो भी अपराध करने वाली व्यक्ति को अपने शोधन के लिए उन्हें प्रणाम आदि करके अपनी क्षमा मांगना चाहिए। कोई वैष्णव अपराध किया वो नहीं माना, कुछ लिया ही नहीं जो अपराध किया, तो अभी तुमने समझा जो अपराध किया है तो शोधन के लिए अनुताप करो और उनको प्रणाम इत्यादि के द्वारा क्षमा कराओ, क्योंकि महापुरुषों के चरण की रज क्षमा नहीं करेगी। वैष्णव क्षमा कर दिया किंतु रज क्षमा नहीं करेगी। उसका अपराध का फल देगी, इसलिए उसे प्रार्थना करना उचित है। उसी के लिए फिर कह रहे हैं ऐसे महाभागवत के प्रति किया हुआ अपराध जब लिया ही नहीं उन्होंने हमारा अपराध, निश्चिंत बैठ जाओ, नहीं उनकी चरण रज नहीं मानेगी। कैसे? सती देवी अपने पिता दक्ष से कहा जो दुष्ट मनुष्य ये मरे हुए शव के समान इस जड़ शरीर को जो आत्मा मानते हैं जैसे तुम हो, नाम नहीं लिया किंतु उनके लिए कहा शरीर को ही मैं मान रहे हो, यदि ईर्ष्यावश महापुरुष अर्थात शंकर जी उन्होंने अपराध नहीं लिया किंतु क्या हुआ उसका यज्ञ विध्वंस हो गया, उसका शरीर सिर काटा गया, यज्ञ में हवन कर दिया गया, फिर उसको शंकर जी ने बकरे का मुंड दे दिया ना? शंकर जी ने अपराध नहीं लिया तो भी, इसे खूब सावधान रहो भाई। महाभागवत गण तुम क्या अपराध कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो उस पर ध्यान ही नहीं देते, उनको सोचने का समय नहीं है, भगवान के लीलाओं के स्मरण में सब समय वो ठीक है, परंतु उनकी चरणों की धूलि इस अपराध को सहन नहीं करती है और उनके तेज को गुण को स्वार्थ और परमार्थ को नष्ट करते। श्रीमद् भागवत में एक ऐसा श्लोक है, कोई याद है? जो वैष्णव को निंदा या क्या करते हैं उनकी आयु, हाँ हंती ना ना आयु जस श्री सब कुछ, हाँ आशीष भी आशीष है ये वचन वैष्णव को, इनसे को बचना चाहिए। माताक्रमेण पूरा श्लोक याद ठीक।
Therefore, we have heard of the dangers of Vaishnava Ninda. And then the question comes, who is a sadhu? Therefore, that personality who is taking Harinam, who is one-pointed in his dedication to Krishna, and he is not engaging in the service of anyone else, especially demigods, then even if he is lusty, even if he is angry, even if he has no samskar, even if he is born in a low family, even if he is addicted to bad habits, then still he is to be accepted as a sadhu. That is our problem. We are thinking, this fellow is very lusty, very angry, so I did not do any blasphemy because this is true. Then what is the fault if I say the truth, if I call a spade a spade? There is no loss for me, I am simply speaking the truth. Then there is a huge loss, because you don't know what is the real symptoms of a sadhu. Therefore, if he is one-pointed and doing bhajan, then he will quickly become pure. Therefore, we should not see the external faults of a sadhu. If he is addicted to bad habits, etc., etc. If he is durachari, means of debauched character, don't criticize him in any way, don't do it. In the Gita, Krishna also says like that. Therefore, if he is a sadhu, we should definitely not criticize him. And if we think he is a non-sadhu, but still he is one-pointed and we criticize him, this is called Vaishnava Aparadha, therefore be very careful. Then someone may give argument. No, the symptoms of a sadhu are given. That person who is equal to all, Samadarsana, that person who has no envy, that person to whom happiness and unhappiness is the same, that person who is the well-wishing friend of all, that person who has no touch of sinful activities, that person who is Krishna is his very life and soul, that person is a sadhu. But we should not think like this. Because Krishna himself says, apichetsa duracharo bhajato mamananiva sarva erahimam mantavya vyasa. Krishna says very boldly, I say he is a sadhu if he is what? One-pointed. Bhajate mama nanyapa, if he is one-pointed in his bhajan. Also Bhagavatam says the same thing. Saranam samachitanam. Saranam samachitanam.
Sutaram
atvidatanam. Dasanam bhava banana. Krishna punsa samachoyator. Therefore, who is that sadhu? Sadhunam samachitanam. His chitta is his mind is completely fixed on me. Therefore, if you think that he is not a sadhu because of his bad habits and you criticize him, this is Vaishnava Aparadha, what to speak if he is a Mahabhagavat, then you criticize him, what to speak of that. Therefore, the real symptom of a sadhu is what? That person who is one-pointed and who has offered himself at the feet of Krishna. Therefore, external symptoms may not be sufficient to tell who is a sadhu or who is not a sadhu. He may have red cloth, 5 kilo chanting beads, but he may not be a sadhu. But there may be a grihastha in white cloth who follows in the Varnashram system, but he may be a sadhu. Therefore, sadhu ninda is very powerful. If you commit offense to a sadhu and chant Harinam, Harinam will not forgive you. Therefore you think, but what type of sadhu is that who will not forgive me? This is not a sadhu, then you should not think that also. But someone may give an argument. Apichetsa duracharo. But when he is a durachari, means a bad character, then he cannot do bhajan if he is addicted to bad habits. On the other hand, if he is doing bhajan, then how can he be a durachari? How he can be addicted to bad habits if he is doing bhajan? So both these arguments are false arguments. There are many examples in Shastra of a person on a very exalted platform performing durachari, bad activities. Sometimes Bhagavan himself arranges this for his devotees. Therefore, we should also not think, but a Mahabhagavat, he never takes offense to anyone. He never becomes angry. Therefore, if I made offense, I should not beg forgiveness. No. You should please him anyhow by doing prayers, duty, by doing dandavat pranams or praying at his lotus feet. But if still that offense is so severe, he will not forgive you, then you should weep at the feet of Harinam and all will be rectified. One should not think, but the Mahabhagavat does not take offense, therefore I will not beg forgiveness, no. Still for one's own purification, one should beg at the feet of the Mahabhagavat, because the Mahabhagavat will not take offense, but his foot dust will take offense. But if you can say, what is the foot dust?
Foot dust is foot dust. What should I tend?
This is something special.
Foot dust will not take any offense.
Foot dust will not take offense. Foot dust is not.
Foot dust chinmay.
He is sevak.
He is sevak also.
Bhakti.
Connected with
Vaishnava. They are sevaks.
The disciples of that Mahabharata, they will take offense.
Also, feet dust also. His dust itself. Sevako are not dust, na? Dhuli, chinmayi. Say, ora libe, or si nashto kare de. Jar sevak, sabhi sevak ta ek saman hobe na, ora ki korbe. Kintu dust je ache, or madhe tej thake.
All sevaks of the Guru understand. Those who are very powerful, they have foot dust.
Sevakai, ami boli, kintu sevako hole oi ta.
So, therefore the Mahabhagavat will not take offense if anything is done against him, but his foot dust will not forgive, because the foot dust of pure devotee is transcendental. Therefore, it is proper in all respects to beg forgiveness. Actually, the Mahabhagavat, he never considers anyone has done offense. What he's doing, good or bad, the pure devotee has no time, because he's always immersed his mind in thinking of the past times of Krishna. Therefore, he's not concerned with what anyone does, good or bad. But still, for ones, it is proper in all respects for us to beg forgiveness. The example is given of Sati Devi said to her father Daksha upon Daksha's offense to Lord Shiva. Sati Devi was so much disgusted with her father, she never said his name. But hey, you living dead body, those who think that I am this body, and this what is connected with this body is mine. A person who thinks like that cannot understand the position of a great soul like Shiva. Therefore, Shankar never took offense at the activities of Daksha. But automatically, by Daksha's offense, what happened? His yagi was destroyed, the fruit of his yagi was lost, all the participants in that yagi were also finished, his head was cut off, and it was replaced with a goat's head. Therefore, Haribol.
एक राजा रहुगण थे, रहुगण सभी देश का राजा, पालकी पर चढ़कर के वो जा रहा था कुछ तत्व उपदेश सुनने के लिए कपिल देव के आश्रम में अथवा किसी के आश्रम में। बीच में उसका धोने वाला कहार बीमार पड़ गया। उन्होंने ढूंढते उनको जड़ भरत को देखा, नंगे, भगवत चिंतन, युवक, बलिष्ठ शरीर, पकड़ करके लगा दिया, लग गए, और कहारों के साथ में पैर नहीं मिलने से चींटी इत्यादि कीड़ों को बचाने के लिए पैर इधर का उधर कर देते थे, इसलिए पालकी डोलती थी। राजा बिगड़ गया, ए दुबला पतला आदमी, कमजोर है, पालकी नहीं ढो सकता, ताने मारने लगा, तो भी कुछ नहीं कहा, चलते रहे। फिर कहा जैसे ये कौन है महाराज, हम लोग ठीक चल रहे हैं, ये पैर में पैर नहीं मिलाता है। गजो तुम नहीं जानता जी मैं कौन हूं, अभी दंड दे करके जम लोग भेज दूंगा, मैं राजा हूं। तो उनकी दया उमड़ पड़ गई। किस लिए कह रहे हैं, महाभागवत होता है, उनका लीला चरित्र समझना बड़ा भारी कठिन है। अपराध होने की तो बात क्या, उनको प्रेम दे देते हैं, तत्व ज्ञान दे देते हैं। तो बहुत निंदा करने पर मुस्कुरा दिए और बोले कौन राजा कौन प्रजा, पालकी है तो ढोने के लिए ही है, कौन मोटा कौन चौड़ा कौन सूक्ष्म, दो चार ऐसे प्रश्न किए। राजा पालकी से नीचे उतर गया, उनके चरणों में गिर गया। जा आप कौन हैं, मैं तुम्हारे वंश में जो राजा भरत थे वही मैं भरत था, और फिर सब छोड़ छाड़ करके भजन करने आया, किस प्रकार से हमारी हुई और किस प्रकार से अब स्थिति में हूं, कृपा करके तुम्हारे सुधार के लिए मैंने ये सब कहा। तो उन्होंने तो कृपा कर दी। तो वैष्णव का चरित्र अद्भुत होता है। नित्यानंद प्रभु अपने मारने वाले कलसी को लेकर के मदिरा का कलसी से मारा, ये फूट गया, रक्त की धार गिरने लगी, और उन्होंने कहा जे ये मेरे मुझे बचाया, महाप्रभु ने आलिंगन किया, उसको प्रेम हो गया, फिर महाप्रभु ने जाओ उनसे क्षमा मांगो। वो भी नित्यानंद प्रभु के चरण में आया, नित्याप्रभु ने उनको भी क्षमा कर दिया, उसको भी प्रेम दिया। देखो तो कैसे दिया। हरिदास ठाकुर को जो 22 बाजार में मारा, अपराध नहीं लिया, कहते भगवान प्रभु इसकी रक्षा करना, इसको क्षमा करना, नहीं माना। 22 बाजार में मार करके उसका मरा सुवार समझ करके फेंक दिया। किंतु हरिदास ठाकुर जी कैसे, वैष्णव परम, अपराध लिया नहीं, उनको प्रेम दिया। किंतु देखो भाई ऐसा समझोगे, यद्यपि ये तो ठीक है अपने स्थान पर, किंतु ऐसा समझो जो मारने से प्रेम दे उनको मारना ही अच्छा है, तो हो गया, ऐसा मत करो। इसलिए फल से देखो, जो तुम्हारा हरि नाम लेने से या हरि कथा सुनने से चित्त द्रवित क्यों नहीं हो रहा, क्या कारण है। भगवान का नाम परम शक्तिशाली है, उनकी लीलाएं परम शक्तिशाली है, क्यों नहीं हो रहा, जरूर अपराध है। इसलिए ज्ञात अज्ञात अपराधों के लिए अनुताप करो, प्रायश्चित लो और निरंतर हरि नाम करो, बस यही उपाय है।
Therefore, how is the astonishing character of Jagannath? Rahugana was the king of Sindhu Desh, present day Pakistan. He was being carried in a palanquin when one of the carriers became sick or disabled. Therefore, they needed a replacement. Therefore, they saw Jagannath was very young with a very powerful body, covered in dust and naked, absorbed in Bhagavad Smaran, thinking of Krishna. Therefore, by force, they engaged him in carrying a palanquin, but he was placing his feet in it here and there in order to avoid squishing the ants. That time, Rahugana became angry. He said, Rahugana said, "Hey, new guy, I know you're very weak. Therefore, you cannot carry this palanquin very well." The other carrier said, "Maharaj, it's not our fault. It is the fault of this new man." Therefore, again, he began carrying it in the same way. Rahugana became angry. "You don't know who I am? I am the king of this area, and I will punish you by sending you to Yamalok with death." Therefore, to understand the character of a Mahabhagavata and his leela is very, very hard to understand. Rugana answered, Maharaj, who is fat, who is thin, who is king, who is the subject, who is the servant? This is all temporary situation. Therefore, just see, Rahugan chastised and threatened Bharat Maharaj with death, disrespected him in so many ways, but still, Jai Bharat Maharaj gave him Prem and gave him Tatvagyan. The king became astonished hearing his instructions and came out of the palanquin and fell at his feet and asked, who are you? He said, you know me, I am in your dynasty. I am the previous Bharat Maharaj. I left everything for Bhajan, but I became attached to a deer, now I have taken this present birth. Just to purify you, I am telling you my life history. Never how the character of Vaishnavas are astonishing. Sri Nityananda was beaten by Jagai Madai. Madai beat him with a liquor pot, and Mahaprabhu came to separate their heads from their bodies. But Nityananda said, no, no, Jagai protected me. Mahaprabhu embraced him, Jagai, and gave him prema. Then Madai fell at the feet of the Lord, and Mahaprabhu sent him to Nityananda. They beat Nityananda in the head, and blood came, he fell on the ground, but still both of them received Krishna prema. How Sri Haridas Thakur was beaten in 22 marketplaces by the Muslims. Haridas Thakur, he never accepted their offense, and in fact, he prayed to Bhagavan to save them and forgive them. Therefore, but we should also not think, we should not think like this. Oh, I should be the Vaishnava, I'll also get prema. No, don't do like that, it's not good for you. Therefore, our heart is not melting. Even though Bhagavan's name is complete, all Shakti, all power is given in the name. Even though his name is so sweet and attractive, our hearts are not melting. Why? Because knowingly or unknowingly we have committed offense to Hari Guru Vaishnava. Therefore be careful, chant the holy name with repentance, and don't commit these offenses anymore.
Oh, 2 minutes you should speak. Ye bolna chahte hain.
Hare Krishna, unlike other previous years, we are leaving for
Govardhan
early in the morning. The last year we've been leaving in the afternoon, but tomorrow by we will start loading the buses. So we need volunteers who can help loading the luggage on the roof of buses and also tie them nicely.
The same devotees who are helping to monitor the buses, please also help to monitor the luggages. We will also be there to help if there is any difficulty. Like the Krishna Prabhu is telling, we want to leave as soon as possible, right after the morning program. There will be breakfast and then right after.
No proper. No breakfast here, in the way.
On the way, yeah. Then we, those devotees who have extra luggages, I request whoever is responsible in Rupsanath and Gaudiya to provide one room where they can put their extra luggages. Yeah. Please, Rasananda Prabhu is not here, I think.
Oh, hi.
You can
Rasanand is here. He is sitting here, I saw.
So come in the morning early with your luggages so that once after Gurudev's Pramachan we can load the buses and leave for Sri Giridhar's Govardhan.
Prashant, you know, a lot of us aren't staying here. We can't even get rickshaws that early to get our things over here.
By the time we will leave, it will be 7:30. Huh? By the time we will leave, it will be 7:30.
I know. No, it's very difficult. You should give them 7.
Like we always do.
7:10. Before that, they should bring all their luggage here.
It's not going to work.
Oh, at 6 you can have. Manage anyhow. Till 7 you must bring all your luggage.
Hare Krishna, many devotees have taken chairs in their rooms here. Those who are staying in Gopinath Bhavan, they have taken chairs, red color chairs in their rooms. It belongs to Tentwala and he has to send them to Govardhan early in the morning. So please take all your chairs out from your rooms